परमेश्वर कब पिता बने? इसका उत्तर ये है कि वे सदैव पिता रहे हैं। वे शाश्वत पिता है और उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। मसीह कब पुत्र बने? इसका उत्तर ये है कि वे सदैव पुत्र रहे हैं। वे शाश्वत पुत्र है और उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। पिता कभी पुत्र के बिना नहीं था और पुत्र कभी पिता के बिना नहीं था। 17:37 पुत्र, अपनी बाइबिल में यूहन्ना 5 खोले। पादरी कहते हैं कि वे 1986 में पिता बने जब उनके पुत्र एंड्रू का जन्म हुआ। उनके पुत्र के जन्म से पहले उनको पिता के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। पुत्र या पुत्री का जन्म ही एक पुरुष को पिता या महिला को माता बनाता है। परंतु परमेश्वर को पुत्र तब नहीं प्राप्त हुआ जब यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो पहले से ही पिता की गोद में है। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि पुत्र पिता के समान है। शरीर धारण करने से पहले परमेश्वर पुत्र ने पिता की महिमा, पिता का जीवन, पिता की गतिविधि और पिता का प्रेम साझा किया। वे प्राकृतिक स्वरूप से ही परमेश्वर है, परंतु उन्होंने इस समानता को वश में रखने योग्य नहीं समझा। उन्होंने स्वयं को पिता के अधीन कर दिया और एक सेवक का रूप धारण कर लिया। एक अवसर पर यीशु ने कहा, पिता मुझसे बड़ा है। पादरी कहते हैं ये उनके कहने जैसा होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति मुझसे बड़ा है। वे राष्ट्रपति के साथ समान मानवता साझा करते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से उनका पद उनसे बड़ा है। इसलिए जब यीशु ने कहा पिता मुझसे बड़ा है, तो उनका मतलब ये नहीं था कि पिता अधिक दिव्य है, बल्कि यह था कि पिता का स्थान अधिक ऊंचा है। पिता स्वर्ग में थे और यीशु क्रूस पर जा रहे थे। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं। पिता के पास जाने का मतलब था उनके ऊंचे पद को साझा करने के लिए वापस लौटना। बाइबल पुत्र शब्द का प्रयोग दो प्रकार से करती है। इसका अर्थ आश्रित रिश्तेदार या प्रतिबिंबित प्रकृति हो सकता है। प्राचीन दुनिया में एक पुत्र अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता था। यदि आपके पिता बड़ाई होते तो आप भी बड़ाई होते, और यदि आपके पिता एक अच्छे बड़ाई होते तो उनके काम की गुणवत्ता आपके काम में झलकती। जैसा कि पुरानी कहावत है, जैसा पिता वैसा पुत्र। नई नियम में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसे प्रेरितों ने बरनाबास उपनाम दिया। बरनाबास का अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि प्रेरितों ने उसे यह नाम क्यों दिया। उन्होंने देखा कि बरनाबास एक बड़ा प्रोत्साहन करता था। वह प्रोत्साहन का साकार रूप था, मानव देह में प्रोत्साहन था। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में पुत्र शब्द का प्रयोग इसी प्रकार किया था। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर महान मेल स्थापित कराने वाले हैं, और जब हम मेल स्थापित करते हैं तो हम उनके चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए जब बाइबल यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में वर्णित करती है, तो पुत्र शब्द का अर्थ यह नहीं है कि वे पिता के आश्रित रिश्तेदार है, बल्कि यह है कि वे वास्तव में पिता के स्वभाव को दर्शाता है। यह इब्रानियों 1 संख्या 3 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का पुत्र वो सब कुछ है जो परमेश्वर है मानव शरीर में। यीशु के लिए परमेश्वर का पुत्र होने का क्या अर्थ है? इसकी पूरी महिमा हमारे लिए यूहन्ना 5 में दिखाई गई है, जहां यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु की गतिविधि वहीं तक सीमित है जो वे पिता को करते हुए देखते हैं। मसीह कह रहे हैं कि वे कभी भी पिता की सीमा के बाहर कुछ भी नहीं करते हैं। पादरी कहते हैं कि काश मैं कह पाता कि मैं जो भी करता हूं वह परमेश्वर के कार्य का प्रतिबिंब है, परंतु निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं कह सकता। फिर भी यीशु बिल्कुल यही कह रहे हैं, तुम्हें मेरे जीवन में एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो परमेश्वर के कार्य की सीमा से बाहर हो। फिर यीशु दूसरा बयान देते हैं जो और भी अधिक आश्चर्यजनक है, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, मैं जो कुछ भी करता हूं वो प्रतिबिंबित करता है कि पिता क्या करते हैं, और पिता जो कुछ करते हैं वो सब मेरे कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो ये दर्शाए कि परमेश्वर क्या करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं या शांति स्थापित करते हैं, तो हम पिता के स्वभाव को दर्शाते हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ परमेश्वर की ही होते हैं। केवल परमेश्वर ही जीवन देते हैं, केवल परमेश्वर ही मृतकों को जिलाते हैं, केवल परमेश्वर ही न्याय करने वाले हैं। ये परमेश्वर की बातें हैं और यीशु हमें बताते हैं कि वे इन्हें करते हैं। जैसा पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। आपका जीवन आपके पिता और आपकी माता के मिलन के माध्यम से परमेश्वर का एक उपहार है। उनके बिना आपका अस्तित्व नहीं होगा। केवल परमेश्वर के पास ही आप में जीवन है। वो एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता। परंतु यीशु कहते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। ये शब्द हमें त्रिएकत्व के रहस्य को आश्चर्य से देखने में मदद करते हैं। ध्यान दे कि यीशु ने यह नहीं कहा, पिता आप में जीवन है और पुत्र आप में जीवन है। इसका मतलब ये होगा कि दो देवता है, दोनों ही अपने आप में जीवन रखते हैं। ना ही यीशु ने कहा, पिता आप में जीवन है और उसने पुत्र को जीवन दिया है। इसका मतलब ये होगा कि पुत्र आपके और मेरे जैसा ही एक सृजित और आश्रित प्राणी था। यीशु ने कहा, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी अपने आप में जीवन दिया। पिता और पुत्र परमेश्वर के एक अनंत जीवन को साझा करते हैं। ये सब एक साथ जोड़ेंगे तो आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखना शुरू कर देंगे। एक दिन वे मृतकों को जीवित करेंगे और सभी लोगों पर अंतिम निर्णय सुनाएंगे और वह उन सभी को जीवन देने में सक्षम है जो उसके पास आते हैं। नया नियम यीशु की पहचान पर बहुत जोर देता है। वह हमारे साथ में प्रस्तुत परमेश्वर है और यह सत्य केंद्रीय महत्व का है, क्योंकि यदि पुत्र परमेश्वर नहीं होता तो हम पिता को नहीं जान पाते। एक अवसर पर फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पादरी कहते हैं कि उनका एक भाई लंदन में है। वो कुछ मायनों में उनके जैसा है, परंतु कुछ मायनों में बहुत अलग है। वे ये नहीं कह सकते कि यदि आपने मुझे देखा है तो आपने मेरे भाई को भी देखा है, क्योंकि भले ही वे एक ही माता पिता से आए हैं, वे बहुत अलग है। उन्हें जानने का मतलब उनके भाई को जानना नहीं है। यदि पुत्र परमेश्वर नहीं होता तो हम पिता को नहीं जान पाते। सबसे बेहतर हम ये कह पाते कि कोई व्यक्ति जो पिता के साथ था हमें उनके बारे में बताने आया, यह यीशु को एक देवदूत या भविष्यवक्ता जैसा बना देता। परंतु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। बाइबल हमें बताती है कि पिता ने हमारे पापों का दोष और दंड अपने पुत्र पर डाल दिया, और ये परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन था। परंतु यदि पुत्र परमेश्वर नहीं होता तो क्रूस क्रूरता का कार्य होता, प्रेम का उपहार नहीं। तब परमेश्वर ने अपनी रचना में से किसी व्यक्ति को चुना होता और उस पर वो सब कुछ डाला होता जिसके सभी लोग हकदार थे। ये कैसा न्याय होता? यदि पुत्र परमेश्वर नहीं होता तो हमें रोमियो 5:8 को फिर से लिखना पड़ता। परमेश्वर अपना अन्याय दिखाता है कि जब हम पापी ही थे फिर भी मसीह हमारे लिए मरा। परंतु पुत्र परमेश्वर है और क्रूस पर वो परमेश्वर ही था जिसने हमारे पापों को उठा लिया और हमारे लिए स्वयं को दे दिया। दुनिया की रचना करने से पहले ही उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को छुटकारा दिलाने की योजना बनाई, ताकि वे हमेशा के लिए उनकी महिमा साझा कर सके। योजना में बड़ी लागत शामिल थी। इसका मतलब होगा कि परमेश्वर स्वयं को अर्पित कर देंगे और ये आत्मदान उनकी अपनी प्रकृति और महिमा का अंतिम प्रदर्शन होगा। परमेश्वर के आत्मदान में त्रिएकत्व के सभी व्यक्ति शामिल होंगे। पिता पुत्र को भेजेगा, पुत्र अपनी जान दे देगा, आत्मा स्वयं को प्रत्येक विश्वासी को दे देगा। पिता और पुत्र की भूमिकाओं पर विचार करें। इनमें से किसकी भूमिका निभाना आसान था? वह जो अपने पुत्र को दे देगा या वह जो अपना जीवन दे देगा? प्रश्न निरुत्तर है। आपके और मेरे लिए आत्मसमर्पण और बलिदान की अनंत कीमत में पिता और पुत्र एक थे। यदि पुत्र परमेश्वर नहीं होता तो आप कभी भी अपने उद्धार के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते। पादरी कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन किया, क्योंकि वे अपना कार्ड अपग्रेड करना चाहते थे। क्या मैं इसे फोन पर कर सकता हूं? उन्होंने पूछा। प्रतिनिधि बहुत मददगार था और उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वे ऐसा कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक पत्र मिला। प्रिय कॉलिन स्मिथ, आपके क्रेडिट कार्ड खाते के संबंध में आपकी हालिया पूछताछ के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से हम आपके अनुरोध के अनुसार आपका खाता बदलने में असमर्थ है। यदि आप अपना खाता बदलना चाहते हैं तो कृपया ऊपर सूचीबद्ध टेलीफोन नंबर पर हमारी ग्राहक सेवा में संपर्क करें। स्पष्टता, प्रतिनिधि को खारिज कर दिया गया था। उसे पूरी ईमानदारी से विश्वास था कि पादरी का खाता फोन पर बदला जा सकता है, परंतु उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। यदि मसीह के साथ भी ऐसा ही होता तो क्या होता? यदि यीशु परमेश्वर नहीं होते तो किसी उच्च अधिकारी द्वारा उन्हें खारिज किए जाने की संभावना हमेशा बनी रहती, और हमें स्वर्ग के द्वार पर इस संभावना का सामना करना पड़ता कि हम प्रवेश करने के योग्य नहीं है। परंतु पिता ने सारा न्याय पुत्र को सौंपा है, और पुत्र स्वभावता परमेश्वर है। मसीह ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं, उनसे उच्च कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए जब पुत्र कहते हैं कि तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, तो तुम्हें वास्तव में क्षमा कर दिया गया है। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। यीशु हमारे साथ में प्रस्तुत परमेश्वर है, और इस कारण से हम वास्तव में उनके माध्यम से पिता को जान सकते हैं। क्रूस पर उनकी मृत्यु हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। परमेश्वर संसार को मसीह में अपने साथ मिला रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व हमारे उद्धार का आश्वासन है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है।